आज का जो टॉपिक है, हम दो तीन हफ्ते से आत्मा के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलग अलग डायमेंशन, पब्लिक में जो परसेप्शन है और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, उन सब पर हमने डिस्कशन किया। आज हम ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पर हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या, आत्मा की क्या स्थिति होती है। पिछले बार थोड़ा बहुत उसमें डिस्कस किया था। मरने के बाद तीन क्या आत्मा के साथ होती है, इसके बारे में पब्लिक में तीन चार तरह की बातें हैं। पहली बात कि आत्मा मरने के बाद अपने कर्मों के अनुसार किसी दूसरे शरीर में जन्म लेता है। ध्यान रखिए, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि मरने के बाद आत्मा भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल, बेताल, शैतान ये बन जाता है। नंबर तीन, मरने के बाद आत्मा स्वर्ग में या नरक में जाता है और कुछ लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये तीन तरह की बातें, मैं दूसरे रिलीजन की बात नहीं कह रहा हूं, हमारे हिंदू भाई बहन जिस तरह के बातें करते हैं या सुनते हैं, छोड़िए भाई बहन को, हमारे तथा कथित सो कॉल्ड जो हिंदू आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, पंडित हैं, जो कथाएं करते हैं जिसमें लाखों की भीड़ होती है, वो लोग भी जिस तरह की बातें, इस तरह के बातें वो करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमने ये जानना, हमारे शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, आत्मा अजर अमर नित्य है, शरीर विनाशशील है। शरीर और आत्मा का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हम लाइफ कहते हैं। जहां जहां भी कॉम्बिनेशन होता है, वहां सेपरेशन का पोटेंशियल होता है। हर वो चीज जो कंबाइंड होकर बनता है, वो एक ना एक दिन सेपरेट होगा। इट्स अनदर लॉ ऑफ नेचर है। तो नेचर में कोई भी चीज दो, एक से अधिक चीजों से मिलके बना है, वो नष्ट होता है। क्योंकि आपका लाइफ बहुत सारे चीजों के मिलके बना है, इसलिए उसको नष्ट होना ही होना है। तो शरीर से आत्मा का अलग होने का नाम मृत्यु है। आत्मा, क्योंकि पिछले बार हमने काफी डिस्कशन किया, आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, ना पैदा होता है ना मरता है, हमेशा एक जैसे रहता है। तो आत्मा तो मरती नहीं है, तो मरती को मरता कौन है? मरता शरीर है। जब शरीर मरता है तो केवल शरीर मरता है, इवन जो मन है, बुद्धि है, और आपके मन में जितने भी कर्मों का संस्कार है, वो सारे संस्कार जो पिछले जन्म में या इस जीवन में जो कुछ हमने किया, जो भोगा, जो एक्सपीरियंस किया, उन सबका एक जो सबकॉन्शियस मेमोरी हमारे मन में स्टोर्ड होकर रहता है, वो सब मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां आदियों के साथ आत्मा के साथ जाते हैं एक नए शरीर की खोज में। तो कौन सा नए शरीर मिलेगा? वही शरीर मिलेगा जितना जैसा आपके अकाउंट में पैसा हो, सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट कौन है? तुम्हारा मन है। वो अकाउंट में पैसा क्या है? तुम्हारे कर्मों का संस्कार है। अगर अच्छा संस्कार बुरा संस्कार में अच्छा संस्कार डोमिनेट है तो अच्छा जन्म मिलेगा, बराबर है तो थोड़ा एवरेज का मिलेगा, बहुत खराब है तो खराब जन्म मिलेगा। इसी तरह आपका आयु और भोग भी होता है। तो जैसा कर्म होगा आपको, उसी हिसाब से अगला जन्म आपको मिलेगा। और जब जन्म मिलेगा फिर मरना भी पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते, जो पैदा हुआ वो मरता है, जो मरता है वो पैदा होता है। ये बहुत ही इनएविटेबल सिचुएशन है, तो इसमें दुख या सुख करने की क्या जरूरत है? ये तो पार्ट ऑफ नेचर है, आप इसको टाल नहीं सकते हो। अगर ना मरना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही उपाय है। तो क्या उपाय है कि हम ना मरे? कि पैदा मत हो। क्या उपाय है कि हम पैदा ना हो? कि मत मरो। इस साइक्लिक मोड में होता है ना। तो जो भी पैदा हुआ है मरेगा, जो मरेगा तो वो पैदा होगा। अरे साइक्लिक मोड में जो चेन होता है वो कौन है? वो तुम्हारे कर्म और उसका संस्कार है। इस तरह आत्मा हजार लाखों लाखों शरीरों से गति करते हुए आज यहां तक पहुंचा है, फिर आगे भी करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? क्या ये साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ इटर्नल है? नहीं, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे? अगर आप वो कर्मों की जो सबकॉन्शियस मेमोरीज हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं, उसको अगर आप किसी तरह रोक दो तो तुम्हारे काम तो करते रहो, तुम्हारे मन में किसी भी तरह का कोई कर्म संस्कार स्टोर्ड नहीं होंगे। जब मरोगे तो अकाउंट खाली है। अब जिसका अकाउंट खाली है वो बेचारा क्या घर लेगा? मतलब अगर आप अपने घर में रहते हैं, घर टूट गया, छोटा हो गया, पुराना हो गया, या किसी भी तरह से आपको लगता है ये घर आपके लायक नहीं है, आप घर चेंज करते हैं तो कैसा घर खरीदेंगे? डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितना सेविंग अकाउंट है, कितना पैसा है। वो पैसा जितना सेविंग अकाउंट के अकाउंट में होगा उसी के हिसाब से आप घर खरीदते हैं, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है। इसी तरह शरीर में भी, ये शरीर रूपक घर जब नष्ट होता है तो आत्मा नया घर ढूंढता है, नया शरीर। डिपेंड करता है कि उसके अकाउंट में, माइंड रूपक बैंक में, ये कर्म संस्कार रूपक जो सेविंग संचित कर्म है वो कितना है और किस टाइप का है। गोल्ड का है, सिल्वर का है, लोहे का है, कैश है, डॉलर रखा है, रुपया रखा है, दिनार रखा है, येन रखा है, क्या रखा है, किस टाइप के कर्म है, किस टाइप के रुपए हैं, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होता है। आपको अगला जन्म उसी हिसाब से मिलता है। और अगर आपने माइंड में किसी भी तरह का कोई संस्कार डिपॉजिट किया ही नहीं है, मरने के बाद ईश्वर ने देखा इसके माइंड में तो एक भी पैसा नहीं है, जीरो जीरो बैलेंस, इसको कौन सा घर दे? अब घर ही नहीं मिलेगा जी, आप हो गए होमलेस, अनिकेत। संस्कृत में शब्द आता है अनिकेत, बड़ा प्यारा शब्द है। ये किसके लिए आता है पता है? सन्यासियों के लिए, ब्रह्मज्ञानियों के लिए। अब इसका कोई घर नहीं है। घर मतलब अब इसको कोई शरीर नहीं मिलेगा, तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गया। छूटने को अंग्रेजी में आप क्या कहते हो? फ्रीडम, लिबरेशन। इसी को हमारे शास्त्र में कहते हैं मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, छुटकारा मिला। कहां से? फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, जन्म और मृत्यु के चक्र से। तो ये हुआ मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था संक्षेप में। अच्छा, जो वो मरने के बाद जो पैदा होगा, क्या क्या बनके पैदा होगा, क्या बनेगा? बोलो, क्या मरने के बाद? ये भी एक पब्लिक में अलग अलग परसेप्शन है। मरने के बाद मनुष्य बनेगा, हमारे आसपास गांव पड़ोस में कोई बनेगा, क्या बनेगा? कठोपनिषद कहता है योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वा यदेहिनः स्थाणु मन्ये अनुसंयान्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। कठोपनिषद 5-7 में कहता है कुछ लोग मरने के बाद दूसरा योनि को प्राप्त होते हैं, योनि मलक मत अर्थात गर्भ में आते हैं। वो मनुष्य का गर्भ हो, पशु का गर्भ हो, मछली का गर्भ हो, पक्षी का गर्भ हो, जिसमें भी प्राण है उसमें आत्मा है, उसमें पैदा होते हैं। पर और कुछ लोग होते हैं जो स्थाणु होकर के पैदा होते हैं, स्थाणु समझते हैं। स्थाणु का अर्थ होता है जिसमें जिसमें प्राण तो है, जब मूवमेंट नहीं करता, जो अनमूवेबल होते हैं, जो जैसे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, इसी को स्थाणु कहा। तो कुछ लोग प्लांट्स ट्री बन के पैदा होते हैं, स्थाणु जन्म लेते हैं, मतलब जीवन तो होता है पर उसमें मूवमेंट नहीं होता है, वो एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते, इसी को हम कहते हैं स्थाणु जन्म, जो पेड़ पौधे आदि होते हैं। बाकी गर्भों में जाते हैं जहां मूवमेंट होता है, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, इस तरह के जन्म लेते हैं। तो कितनी तरह के प्राणियां है मनुष्य आत्मा जन्म ले सकता है, तो हमारे शास्त्र इसको चार तरह से क्लासिफाई करते हैं कि ये संसार में जितने तरह के भी प्राणी हैं। वैसे तो जैन साहित्य में, ध्यान रखिए, जैन साहित्य में 84 लाख तरह की स्पीसीज है ना, 84 लाख तरह की योनियों की बात की जाती है। और हो सकता है आजकल मॉडर्न बायोलॉजी में या जो भी प्राणियों से रिलेटेड रिसर्च करते हैं उसमें इसकी संख्या ज्यादा हो, कम हो, जो भी हो, तो ये सब प्राणी है और इन सब में आत्मा है, और इनमें से किसी भी शरीर में हम पैदा हो सकते हैं या पहले हो रखे हैं। उन सब 84 लाख तरह की जो योनियां है, अबाउट 84 लाख योनि, ऐसा नहीं कि यही एक्यूरेट नंबर है, इनको चार तरह से बांटा है। उनमें से कुछ होते हैं जरायुज, जो गर्भ से पैदा होने वाले होते हैं, जैसे मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, घोड़ा है, गाय है, हाथी है, जो गर्भ में मां के गर्भ से पैदा होते हैं, ये एक टाइप के प्राणी होते हैं जहां आत्मा हो सकती होती है। दूसरा जो अंडे से पैदा होते हैं, पशु है, पक्के आपका बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, मछली वगैरह है, सरीसृप जो रेप्टाइल्स हैं, स्वेदज जो गर्मी से पैदा होते हैं या गंदगी से पैदा होते हैं, गंदगी से पैदा होते हैं या कोई चीज सड़ जाने पर, डिकम्पोज होने पर उससे जो पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े, जर्म्स, इंसेक्ट्स, वो सब स्वेदज कहलाते हैं। जो चौथे कैटेगरी का है उसको कहते हैं उद्भिज्ज, जो बीज से या कलमी करके जो पैदा होते हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको कहते हैं उद्भिज्ज। तो इनका थोड़ा हम शास्त्रीय प्रमाण देखेंगे। मैं यहां मनुस्मृति के कुछ लोगों को कोट करूंगा। येषां तो यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् तत्तथा वो अभिधास्यामि क्रमयोगम च जन्मनि। सुनो, मनुस्मृति में मनु कहते हैं, जिसका जैसा कर्म है, जिस प्राणी का, भूतानाम अंडरलाइनिंग है, जिन प्राणियों का जैसा कर्म है, उन कर्मों के अनुसार उनको क्या क्या जन्म मिलता है, मैं उसको डिटेल में नीचे बता रहा हूं। पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजः। पहली कैटेगरी है जरायुज, जो मां के पेट से, गर्भ से पैदा होते हैं, वो पशु पक्षी पशु मनुष्य बदमाश टाइप के लोग, जिनके दो धाड़ी दांत है, ऊपर और नीचे की दांत की धाड़ियां है, और गर्भ से पैदा होते हैं, इसको कहते हैं जरायुज। अगला क्या है अंडज, अंडजा पक्षिण सर्प नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च। ये अंडज दो तरह के हो सकते हैं, अंडा से पैदा होने वाले, जमीन पर भी या पानी में रहने वाले प्राणी होते हैं, जैसे पक्षी हैं, ये जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, सांप बिच्छू टाइप के, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, मछलियां, कछुए, और इस तरह के दूसरे भी जो भी प्राणी जो अंडे से पैदा होते हैं जमीन पर या पानी में, वो सब अंडज प्राणी कहलाते हैं। दूसरा स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत् कुणं उष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत् किंचेदीदृशम्। तीसरा है स्वेदज, जो गर्मी से गंदगी से सड़ जाने से पैदा होते हैं। कौन है? दंश, ये जो ग्नैट्स होते हैं, गैटफ्लाइज होते हैं, लाइस होते हैं, ये जो सर में आपके कीड़े होते हैं, इसका मतलब है कोई भी कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट्स, बग्स, जो भी गंदगी से गर्मी से आपके शरीर के अंदर भी पैदा होते हैं, बाहर भी पैदा होते हैं, और इस तरह के सिमिलर कैरेक्टर वाले कोई भी छोटे मोटे प्राणी जो होते हैं वो सब स्वेदज कहलाते हैं। और चौथा, देखिए, पेड़ पौधे में प्राण है या आत्मा है, लाइफ है, ये हमारे हजार हजार सालों से हमारे ये ज्ञान था, और न केवल ज्ञान था, हम इसको बहुत ही डिटेल में जानते थे। उद्भिज्ज स्थावरा सर्वे बीज कांड प्ररोहिण औषध्य फलपाकांता बहुपुष्प फलोपगाह। चौथे कैटेगरी के प्राणी जिसमें आत्मा पैदा होता है, उद्भिज्ज, उद्भिज्ज कौन है? जो स्थावर होते हैं, स्थावर इमूवेबल, उनमें मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट का अर्थ है एक जगह से दूसरे जगह को शिफ्ट होना, पेड़ पौधे में ये सब नहीं होता। वो स्थावर भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ तो बीज से पैदा होते हैं, बीज सीड से, या कांड प्ररोहिण, कांड मतलब किसी ब्रांच को आप क्लोनिंग करके उनमें से पैदा करते हो। वो बेसिकली तीन चार तरह के होते, एक तो औषधि, औषधि कहते हैं जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं ना, जैसे धान गेहूं वगैरह, उसको औषधि कहते हैं। एक होता है संस्कृत में औषधि, एक होता है औषध। औषध तो मेडिसिन है, औषधि ई एंडिंग जो होता है इसका अर्थ होता है ग्रेन्स, अनाज। तो वो जो उद्भिज्ज है, जो कि स्थावर होते हैं स्थानों, उनमें भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, चार कैटेगरी बेसिकली। पहली कैटेगरी है औषधि, जो धान गेहूं तरह के होते हैं, जिसमें बहुत सारे फूल और फल आते हैं, और फल के पकने के साथ ही पेड़ नष्ट हो जाता है, फलपाकांत बहु पुष्प फलोपगाह। दूसरे टाइप के उद्भिज्ज होते हैं वनस्पति, वनस्पति कहते हैं अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतय स्मृता, उनमें फूल नहीं होता, फल भी नहीं होता, खाली पेड़ के पेड़ होता है, उसको वनस्पति कहते हैं। तीसरे कैटेगरी के जो उद्भिज्ज होते हैं उसको वृक्ष कहते हैं, पुष्पिणा फलिनाश्चैव वृक्षास्तु भयत स्मृताः। जिन पेड़ों में फल भी होता है, फलों से फूल भी, सॉरी, जिन पेड़ों में फूल भी होता है, फूलों से फल भी होता है, उसे वृक्ष कहते हैं। जैसे आम है, अमरूद है, बड़ है, जिसमें फूल फल दोनों होते हैं। दूसरी और एक कैटेगरी है, उसको कहते हैं गुच्छ गुल्म, चौथी कैटेगरी। गुच्छ गुल्म ये जो बुशेष होते हैं, गुच्छ गुल्मम तो विविधम तथैव तृणजातयः बीजकांड रुहण्येव प्रतानावल्य एवच। तो चौथी कैटेगरी में आता है गुच्छ और गुल्म, झाड़ियां जिसको आप कहते हैं, जो झाड़ी के रूप में पैदा होते हैं। चौथी कैटेगरी होती है तृणजातयः, घास फूस वगैरह जो होते हैं। पांचवा कैटेगरी होती है लताएं, ये जो क्रीपर्स होते हैं, टेंड्रेल्स होते हैं, जो दूसरों के सहारे बढ़ते हैं। तो इस तरह जो उद्भिज्ज है वो छह सात तरह के होते हैं। औषधि, औषधि अर्थात अनाज फल फूल देने वाले, और बहुत गुच्छे में आने वाले, फलों के पकने के साथ जो नष्ट हो जाते हैं उसको कहते हैं औषधि, जिसमें फल फूल कुछ नहीं होता है वो वनस्पति, सेकंड कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में आता है वृक्ष, जिसमें फल और फूल दोनों होते हैं। चौथे कैटेगरी में आते हैं गुच्छ गुल्म, जो झाड़ियां होती हैं। पांचवी कैटेगरी में आते हैं तृणजातयः, घास फूस वगैरह। छठे कैटेगरी में आते हैं प्रताना वल्यः, जो लताएं होती हैं, बेल होते हैं या क्रीपर्स होते हैं, इनको होते हैं। ये सारे के सारे दो तरह से पैदा होते हैं, या तो बीज से पैदा होते हैं या स्लिप से, उन ब्रांचेस को काट के उनसे आप दूसरा पेड़ पैदा करते हैं। वृक्ष जन्म जनरली किसको मिलता है? ये जो पेड़ पौधे का जन्म है, उद्भिज्ज जन्म, ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो बहुत ज्यादा पापी होते हैं। तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंतसंज्ञा अंतसंज्ञा भवन्तेते सुख दुख समन्वितः। ये जो वेजिटेबल बींग्स है ये बहुत ज्यादा इनर्शिया में रहते हैं, इनमें लाइफ होने पर भी ये हमेशा इनर्शिया स्टेज में रहते हैं। क्यों होते हैं? कर्म हेतु ना, उनके पुराने कर्मों के कारण, बहुत भयानक पाप आदि करने के कारण ये पेड़ पौधा का जन्म मिलता है। उनके अंदर अंतसंज्ञा होती है, मनुष्य पशु पक्षियों की जो संज्ञा है, जो कॉन्सियसनेस है, वो इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है, पर पेड़ पौधों में जो संज्ञा है, जो कॉन्सियसनेस है, वो इनर होता है, अंदर रहता है। और सुख दुख समन्वयता, उनमें भी प्लेजर एंड पेन का फीलिंग होती है, सुख दुख का फीलिंग होता है, बहुत बहुत माइनूट लेवल पर, क्योंकि वो हमेशा इनर्शिया मोड में होते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोमा में हो या आपने एनेस्थेसिया ले रखा हो, कोई सुन करने वाली मेडिसिन एनेस्थेसिया ले रखे हो, जैसे आपको बहुत ज्यादा फील नहीं होता है, उसी तरह पेड़ पौधों में वो जड़त्व ज्यादा होने के कारण उनमें बहुत कम फीलिंग होती है। तो हमने ये जाना, मरने के बाद आत्मा पैदा होती है और किस किस शरीर में पैदा होती है, उन शरीरों का जो डिवीजन है चार तरह से हमने जाना, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। अब अगला सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल है। वो है, अगर आत्मा मरने के बाद पैदा होता है कर्मों के अनुसार इन सब शरीरों में, तो फिर ये जो भूत है, प्रेत है, कहते हैं ना किसी में स्पिरिट पुज्जेश किया, भाई इसके अंदर आत्मा घुस गया है, दूसरे की आत्मा, डायन ये बन गई है, चुड़ैल है, शैतान है, बुरी आत्माएं आ गई हैं, ये सब क्या चीजें हैं? आप कहेंगे इन सब का कोई मतलब नहीं है, ये सब तो वैसे ही है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत वैल्यू है जी, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। पहले तो देख लीजिए आत्मा क्या क्या बनती है मरने के बाद, आम लोगों के नजर से भूत, प्रेत, बुरी आत्मा, शैतान, बेताल, डायन, चुड़ैल, ये सब बनता है। ये प्रसंग मैंने क्यों उठाया, इसका मैं आपको एक अपना निजी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैंने गूगल में टाइप किया आत्मा का लक्षण और आत्मा हिंदी में, अंग्रेजी में जब मैंने टाइप किया सोल, डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल, तो मुझे काफी सारे साइट्स मिले या एसेज मिले जो सोल को डिफाइन करते हैं। उसमें बहुत सारे हिंदू फिलॉसफी के दृष्टि से भी, दूसरे रिलीजन के फिलॉसफी के दृष्टि से भी, सोल क्या है, कहां रहता है, बहुत हम उसे एग्री करें ना करें डिस्क्राइब होता है। पर जब मैंने गूगल में हिंदी में टाइप किया आत्मा क्या है, देखिए क्या मुझे गूगल में मिला, तो आप समझ सकते हैं लोग आत्मा कहते ही आम हिंदू लोग क्या समझते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ऊपर देखिए गूगल में आत्मा के लक्षण और ये आया दुष्ट आत्मा के लक्षण। ये 10 लक्षण बताते हैं शरीर पे भूत है, पापी आत्मा के लक्षण पाठ, भूत प्रेतों के 10 रहस्य, भूत प्रेत दोष को पहचाने, भूत प्रेतों के रहस्य, भूत प्रेत दोषों को जाने, अतृप्त आत्माएं, शरीर और आत्मा, चेतना, घर में भूत प्रेत होने पर क्या करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ढूंढते जाएं हजारों हजारों साइट्स हैं। और हिंदी भाषा में टाइप करने का मतलब है जो आम आदमी है उसको अगर कहोगे कि इसके अंदर आत्मा है तो समझ बैठेगा कि इसके अंदर भूत घुसा हुआ है। तो इसीलिए आपको अभी लगता होगा कि कितना सीरियस टॉपिक है जानने का कि ये मामला क्या है, ये भूत प्रेत वाला। अब इसके दो तीन चीजें जानने की जरूरत है। पहली चीज है, हिंदू साहित्य में, मतलब हिंदू धर्म के प्राचीन लिटरेचर में, प्राचीन लिटरेचर मतलब वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वेदांग, महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र में कहीं भी ये जो भूत और प्रेत शब्द तो बहुत मिलता है, ध्यान दीजिएगा, पर वो भूत प्रेत इस अर्थ में कहीं नहीं मिलता। घोष्ट, स्पिरिट, अतृप्त आत्मा, किसी के अंदर घुसने वाला शैतान, बुरी आत्मा, इस अर्थ में कहीं नहीं मिलता। क्या मिलता है? अभी आपने मनुस्मृति में ये श्लोक देखा, येषां तु यादृशं कर्म भूतानाम इह कीर्तितं भूत। और किसी हिंदू पंडित को पूछो, मतलब हमारे भाई बहनों में से किसी पढ़े लिखे आदमी को भी पूछो, वो कहेगा यहां भूत मतलब भूत नहीं, यहां भूतों का अर्थ प्राणी। संस्कृत में भूत शब्द का अर्थ होता है भू धातु, टू बी अंग्रेजी में कहते हैं होना, हिंदी में क्त प्रत्यय, क्त जो सफिक्स है वो पास्ट टेंस के लिए आता है, इसका अर्थ है जो पैदा हो गया, जो बन गया वो भूत है, जो पैदा हो गया वो भूत है। मतलब मैं भूत हूं, आप भूत हो, ये भूत है, जो कुछ भी पैदा हुआ है, बना है, वो सब भूत है। ये संसार का हर वो जड़ और चेतन तत्व भूत है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। फिर आप गीता में, दर्शन शास्त्रों में और भी अलग अलग शास्त्रों में आप पढ़ते हैं क्या, ये जो पंच महाभूत, अब ये घोष्ट तो नहीं है, फाइव बेसिक एलिमेंट्स, इन बेसिक एलिमेंट्स को भी भूत क्यों कहा? ये भी पैदा होते हैं, बनते हैं। एनीथिंग व्हिच इज मेड और क्रिएटेड दैट इज कॉल्ड भूत। मतलब जो है, जो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, पर अगर वो पैदा हुआ है, अगर वो बना हुआ है, वो सो भूत है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानो पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगोप्सते। ईशोपनिषद, जो सभी भूतों में खुद को देखता है, खुद में सब भूतों को देखता है, वो ज्ञानी है। मतलब भूत मतलब भूत प्रेत को देखता है नहीं, जो सभी प्राणियों में जो भी पैदा हुआ है, क्रिएचर। तो भूत का अगर आप कोई संस्कृत में जो भूत शब्द है उसका अगर आप लिटरेरी ट्रांसलेशन करें, इट विल बी क्रिएचर। जो भी पैदा हुआ है उनमें खुद को देखना, रियलाइज करना, फील करना, खुद में मैं जैसा हूं सभी क्रिएचर ऐसा है, ऐसा फील करना। तो भूत शब्द का हमारे शास्त्रों में का अर्थ होता है हर वो वस्तु, वो जड़ हो या चेतन हो, जो भी एग्जिस्टेंस में है, वो पैदा हुआ है, जो भी पैदा हुआ है, बना हुआ है, सब भूत है। प्रेत क्या है? ये दो शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेत शब्द का अर्थ होता है जो मर गया। प्र, इसकी एटिमोलॉजी जरूरी है, प्र संस्कृत में एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है अच्छी तरह, एण धातु एक रूट है, एण ई धातु जिसका मतलब होता है टू गो, क्त प्रत्यय पास्ट टेंस में सफिक्स प्रयोग होता है जिसका मतलब होता है, जब ये तीनों मिल जाते हैं प्र प्लस इत, तो इसका मतलब होता है जो अच्छी तरह मर गया या चला गया। इसको आप स्लाइड से देखिए तो थोड़ी क्लियर क्लैरिटी आएगी। तो चलिए इसमें नहीं है, ओके मैं भूल गया। तो प्र प्लस हिता, जो अच्छी तरह चला गया अर्थात जो मर गया, नष्ट हो गया, दोबारा नहीं आएगा, वो प्रेत है। तो जब हमारे किसी का डेथ होता है वो प्रेत है, जो मर गया वो प्रेत, जो पैदा हुआ वो भूत है। इसीलिए जब वो किसी का डेथ होता है, कोई मर जाता है ना, तो उसको कंधे पर लेकर जाते हैं श्मशान भूमि तक। तो जो कंधे पर जो लेकर जाते हैं उनको संस्कृत में कहते हैं प्रेतहार। प्रेत मतलब मरा हुआ को ढोने वाला, मरे हुए को जो ढो कर ले जाता है उसको प्रेताहार कहते हैं। अब कहते हैं पुराणों में जो शिव है उस शिव को वो भूतनाथ कहते हैं। शिव कौन है? परमात्मा का नाम है, ईश्वर का। ईश्वर भूतनाथ क्यों है? भूतनाथ का अंग्रेजी ट्रांसलेशन करेंगे क्या होगा? लॉर्ड ऑफ क्रिएचर। जो कुछ भी यहां पैदा हुआ है, जड़ हो या चेतन हो, जड़ बनाए जाते हैं और चेतन पैदा किए जाते हैं। जड़ और चेतनों का जो स्वामी है, भूतों का जो नाथ है, पुराणों में उसी भूतनाथ का अर्थ क्या क्या? भूत और प्रेतों का। भूत प्रेत मतलब घोस्ट एंड जो स्पिरिट का जो लीड करता है वो शिव को दिखा दिया। तो पहली चीज है कि हमारे यहां कोई रेफरेंस ही नहीं मिलता। ये जो भूत प्रेत देख करके आजकल आप डरते हो या लोग डरते हैं, वो किसी भी शास्त्र में, पुराने शास्त्र में हमें नहीं मिलता। ये आया कहां से, अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये हुआ रेफरेंस, शास्त्र प्रमाण। अब लॉजिकली बात करते हैं, भूत प्रेत हो ही नहीं सकते। क्यों? जब आत्मा मरने के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश, एक नया जन्म लेता है, तो खाली टाइम कहां बचा कि वो आपको डराने आएगा, धमकाने आएगा, बीच रास्ते में सफेद कपड़े पहन करके आपको डराएगा या किसी के अंदर घुसेगा। मरने के बाद तो वो अपना जन्म ले चुकी है, अगर बहुत गंदा भी है, बुरी आत्मा जिसको आप कह दें, तो बुरा जन्म मिलेगा, पेड़ पौधों का जन्म मिलेगा, वो तो जन्म ले चुका है, बचा कहां से बीच में भूत बन के, प्रेत बन के, डायन चुड़ैल बन के आपको परेशान करेंगे। अगर भूत प्रेत को मानेंगे तो कर्म सिद्धांत बेकार हो जाएगा। तो लॉजिकली भी भूत प्रेत हिंदू धर्म का पार्ट नहीं था। शास्त्र के दृष्टि से भी भूत प्रेत हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग आपको प्रमाण देते हैं, भूत प्रेत मतलब जो एक्चुअली जहां से आया, घोस्ट एंड स्पिरिट, घोस्ट और स्पिरिट का या डेविल का या बैड सोल का कोई संस्कृत में शब्द ही नहीं है। और जो भी शब्द है भूत प्रेत वगैरह, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो किस अर्थ में हमारे यहां प्रयोग होते रहे। और एक लास्ट बात करके फिर हम इसकी ओरिजिन पर जाएंगे। एक शरीर में दो आत्माएं कैसी आएंगी? एक आत्मा है, आत्मा हमेशा, आत्मा का तो अपना कोई शरीर होता नहीं है, वो घूमता फिरता कैसे? फिर किसी एक शरीर के अंदर दो आत्माएं कैसे? एक आत्मा तो ऑलरेडी है, दूसरी आत्मा कैसे घुस जाती है? और एक मजेदार बात ध्यान रखिए, ये आत्माएं कभी आपको नंगी नहीं दिखती हैं। जितनी भी आत्माएं, जिन जिन भूतों को लोग कहते हैं ना, हमने घोष्ट देखा है, स्पिरिट देखा है, हम गाड़ी चला के जा रहे थे, रास्ते में वो सफेद साड़ी पहन के खड़ी हो गई, या वहां ऐसे कोई भी, जहां भी है, जो भी दावा करता है हमने भूत प्रेत को देखा है। एक चीज मजेदार बात ध्यान रखिए, कोई भी दावा नहीं करता है कि भूत प्रेत नंगे थे। तो अगर भूत प्रेत कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े कहां से लाए? और लाए तो पहना कहां? शरीर तो है नहीं। अभी आंसर किसी के पास होता नहीं है। अब हम आते हैं, ये भूत प्रेत आया कहां से? और सारा दुनिया में तो फैला ही फैला है घोस्ट स्पिरिट वगैरह का स्पिरिट पोजिशन, भारत में हिंदुओं में भी क्यों ऐसा फैला? ये जो भूत प्रेत का कंसेप्ट है, डायन चुड़ैल वगैरह का साया बुरी आत्मा का, ये एक अब्राहिमी कंसेप्ट है। अब्राहिमी कंसेप्ट समझते हैं, जो अब्राहिमिक रिलीजियंस जो इब्राहिम मोजेस से आगे बढ़े, जिसमें आपकी जुडाइज्म है, हिंदी में हम यहूदी कहते हैं, क्रिश्चियनिटी है, ईसाई इस्लाम है, और उनके भी जितने भी उनके सेक्ट और सब सेक्ट है, ये उनके थियोलॉजी का, उनके धर्म सिद्धांत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। भूत प्रेत आत्मा, ये जो आत्मा जो आपने हिंदी में गूगल में सर्च करने पर मिला, ये वही कंसेप्ट, उन्हीं का कंसेप्ट हम लोगों ने उनसे ये इंपोर्ट किया है। और खाली इंपोर्ट नहीं किया, इसको इंपोर्ट करके हमने भी को डाइजेस्ट करके अपना बना लिया। उनका कंसेप्ट क्यों है? अब्राहमिक ट्रेडिशन में आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, फिर क्या होता है? मोक्ष का क्या कंसेप्ट है? आत्मा मरने के बाद, आफ्टर डेथ सोल का क्या कंसेप्ट है? आत्मा मरने के बाद वेट करती है, प्रतीक्षा करती है इस कयामत के दिन के लिए। क्रिश्चियनिटी में आप कहते हैं डे ऑफ जजमेंट, इस्लाम में उसको कयामत के रोज, मतलब कयामत का दिन, एक दिन आएगा उसका नाम है कयामत का दिन या डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन जो गॉड है, अल्लाह है, जो भी उनके, जिसको भी वो, जिस रूप में वो परमेश्वर को मानते हैं, वो आएगा और पूछेगा। क्रिश्चियनिटी में जीसस से पूछेगा, और इस्लाम में जो लोग अल्लाह को मानते हैं उन सबको वो स्वर्ग ले जाएगा और बाकियों को सब नरक भेजेगा। अच्छा, वो डे ऑफ जजमेंट आएगा कब? कब आएगा? अब उनका फिक्स है, 5,000, 10,000, 20 कितने बार तो वो उनके बहुत सारे जो धर्माचार्य घोषणा कर चुके हैं, बस आ रहा है, आ रहा है। तो तब तक क्या करेंगे? डे ऑफ जजमेंट मानो 10,000 साल के बाद आएगा और आज मैं मर गया, तो तब तक वो आत्मा है क्या? जो मर गया वो क्या होगा? उसकी आत्मा कहां जाएगी? इसलिए उसको ग्रेवयार्ड में दफनाते हैं। क्यों दफनाते हैं? अब्राहमिक कल्चर में मरने के बाद बॉडी को क्यों दफनाते हैं? क्योंकि शरीर को नष्ट नहीं कर सकते, फिर भगवान कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा आत्मा है? वो शरीर से रिकॉग्नाइज करेगा, इसलिए शरीर को संभाल के रखना है और उसको ग्रेवयार्ड में दफनाते हैं। और वो जो आत्मा है उनके शरीर के साथ कोई छेड़खानी ना करे तो वहां मंडराते रहते हैं। कब तक? वेट करते रहते हैं जब तक डे ऑफ जजमेंट या कयामत का दिन ना आ जाए। खाली बैठे बैठे आत्मा क्या करेगा? कितने घंटे तक शरीर को अपना नजर रखता रहेगा? बीच बीच में इधर उधर चला जाता है। अगर अच्छी आत्मा है तो वो अच्छा घोस्ट और स्पिरिट बन के आपको हेल्प भी करता है, और अगर बुरी आत्माएं हैं वो आपको परेशान करते। खाली दिमाग शैतान का घर, आत्माएं बैठे बैठे क्या करेंगे? कब तक वेट करते रहेंगे? कुछ ना कुछ करती रहती है, वेट करते रहते हैं डे ऑफ जजमेंट के लिए, फिर वो स्वर्ग नरक चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, तब तक वो घूमते रहते हैं। तो उनके कंसेप्ट के हिसाब से तो भूत प्रेत की जरूरत है भाई, हमारे यहां तो कोई मैच ही नहीं करता, ना इसका कोई रेफरेंस है, ना कोई प्रमाण है, ना इसका कोई लॉजिकल कोई कंक्लूजन बनता है, कुछ भी नहीं। पर क्योंकि उनके संबंध में आने के बाद हिंदू लोग ज्यादातर अपने चीजों को पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं उनके, इसीलिए मैंने कहा हिंदू धर्म के प्राचीन साहित्य में, प्राचीन मतलब वेद आदि लिट साहित्य में, केवल वेद नहीं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, कहीं भी इसका कोई रेफरेंसेस नहीं मिलता। मिलता कब? पिछले 1000-1200 साल से जो लिटरेचर लिखे गए उन्हीं में मिलता है। तब तक उनसे हम काफी फैमिलियर हो गए थे, वो हमारे यहाँ राज करने आ गए थे, मिलना जुलना उनसे हम कंसेप्ट लिया और हम करते रहते हैं। तो हमने उन्हीं से ये आत्मा जो घोष्ट और स्पिरिट वगैरह का ज्ञान लिया। और एक मजेदार बात आपको बताएं एविडेंस के रूप में, ये जितने भी मूवीज बनते हैं हॉरर मूवीज जिसमें ये घोष्ट और स्पिरिट को दिखाया जाता है, वो मूवी इंग्लिश में बने, हिंदी में बने, रीजनल लैंग्वेज में बने, दुनिया की किसी भी भाषा में बने, आपको पता है वो जो भूत प्रेत वाला जितने भी मूवीज होते हैं हॉरर मूवीज होते हैं उसमें एक चीज आप नोट करिएगा, वो हमेशा किसी पुराने चर्च होगा, ग्रेवयार्ड होगा, मतलब कब्रिस्तान के आसपास ही होता है। कभी किसी श्मशान भूमि में कोई आजकल दिखा दे अलग बात है, पर अभी तक तो क्योंकि हिंदुस्तानी तो नकलची होते हैं ना, तो हिंदुस्तानी मूवी मेकर भी भूत प्रेत का भी बनाते हैं, उनको पता है क्योंकि हॉलीवुड से नकल करते हैं, तो वो भी वही ग्रेवयार्ड और चर्च उसी के आसपास दिखाते हैं। पादरी का यहाँ रोल होता है या मुल्ला का रोल होता है, किसी पंडित जी का कोई रोल ही नहीं होता है। कभी किसी मंदिर के आसपास स्मशान में का कोई रेफरेंस नहीं आता है भूत प्रेत में, मूवीज में भी स्टोरीज में भी नहीं आएगा। क्यों? ये हमारा नहीं है, ये फॉरेन कंसेप्ट है हिंदू लोगों के लिए, जिसको हमने खा पी कर डाइजेस्ट कर लिया है और अपना मान के बैठे हुए हैं। इसका प्रॉब्लम क्या होता है, आगे जाकर गरीब लोगों में, अनपढ़ लोगों में ये बात इतनी गहराई में चला गया, लाखों करोड़ों महिलाएं इनके कारण शोषित होते हैं, इसके अंदर डायन घुसी है, चुड़ैल घुसी है के नाम पर उनको ओझा के पास ले जाते हैं। और ध्यान रखिएगा और एक मजेदार बात, जितने भी भारत में ओझा होते हैं ना, ओझा समझते हैं ये जो विच हंटर होते हैं, जो भूत प्रेत से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं, है ना, तो ये सबके सब या तो 90% तो ये मुस्लिम होते हैं, चलो 75% मुस्लिम होते हैं, बाकी जो 25% होते हैं वो ट्राइबल लेडीज होते हैं, आदिवासी, क्योंकि आदिवासियों में भी ये कंसेप्ट बहुत होता है ट्राइबल वगैरह में, क्योंकि वहां तो एजुकेशन नहीं होता है, होता है तो जब भी झाड़ फूंक वगैरह होता है तो बंगाली बाबा वो कोई मुसलमान होगा आएगा, पर हम हिंदू इन चीजों को सब एडजस्ट कर चुके हैं। आप कहेंगे कि आप कहते हो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये फिक्शनल है, ये इमेजिनरी है, ये अब्राहमिक रिलीजन का एक प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, डेफिनेटली ये इमेजिनेशन है। फिर लाखों लोग दावा करते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, कि हमने भूत देखा है, प्रेत देखा है, गाड़ी चला के जा रहे थे वो कर्नर पर, वो एक हमेशा बहुत लोगों ने कहा वो कर्नर पर एक लड़की आ जाती थी आधी रात को सफेद साड़ी पहन के, यो क्या है, इसको कहते हैं आपकी मन का भ्रम। एक बीमारी होती है इसको कहते हैं डिलीरियम, जिसमें आप बेहोशी में बड़बड़ाते हो, प्रलाप करते हो, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए इलाज के लिए। अब गांव में शहरों में जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को वो समझते हैं कि इसके अंदर भूत घुसा है, इसको पागलपन का दौरा पड़ता है, कुछ नूट पटांग बड़बड़ाता है, जी मैं पिछले जन्म में वहां पैदा हुआ था, उसने मुझे ये मारा, कुछ भी दिमाग में आता है बोलता है, वो उसको साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास या साइकेट्रिक के पास ले जाना चाहिए। ये एक बीमारी है, ये एक मेंटल बीमारी है जिसकी इलाज है। मोस्टली उन्हीं लोगों को भूत और प्रेत देखते हैं, आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिएगा, उन्हीं लोगों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं जो भूत प्रेत मानते हैं, और जो भूत प्रेतों को नहीं मानते वो कितना भी कोशिश कर ले उनको कभी दिखाई देता ही नहीं है। इसीलिए मजेदार बात देखेंगे किसी भी बड़े शहरों में भूत प्रेत कम दिखाई देते हैं, ज्यादातर भूत प्रेत रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, छोटे गांव में, छोटे शहरों में दिखाई देते हैं। मतलब जहां इलिटरेसी जितनी ज्यादा हो, प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत हो, वहां पर ये भूत प्रेत ज्यादा दिखाई देते हैं। आप अपने बच्चे को आप कहेंगे, देखो हम तो सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, पर हमारे से में बहुत लोग दावा करते हैं कि जी हमने देखा, हमारे फ्रेंड ने देखा, हमारे मित्र ने देखा, हमारे उसने देखा। देखा जी, पढ़े लिखे होने की बात नहीं है, सबकॉन्शियस मेमोरी है। मैं आपको इतने जोर जोर से बोलता हूं भूत प्रेत नहीं है जी, मैंने भी देखा है। क्यों देखा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चा पैदा होने के साथ ही उसको डराने के लिए, मजाक करने के लिए किसी भी तरह से माँ बाप उसके कान में डालते रहते हैं, भूत आएगा, प्रेत आएगा, भूत है, हरर है। माँ बाप नहीं, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, दोस्तों में, आस पास वो भूत प्रेत को सुनता रहता है, कहानियां पढ़ता रहता है, माँ बाप डराते रहते हैं। वो सबकॉन्शियस मेमोरी में जा चुका है। वो भूत प्रेत है नहीं है कि नहीं, भूत प्रेत के प्रति जो डर है वो आगे जाकर कितना भी साइंटिस्ट बने, साइंटिफिक सोचे, कितना भी वेद शास्त्रों को पढ़ने के बाद प्रूफ मिल जाए कि नहीं है, आधी रात को उसको श्मशान में छोड़ दो वो भी डर जाता है। क्यों? वो जो डरना इसीलिए नहीं कि भूत प्रेत है वो मानता है, क्योंकि जो बचपन से उसके अंदर संस्कार डाला गया है वो संस्कार के कारण उसको डर लगता है। अल्दो वो हजार बार प्रूफ कर सकता है कि भूत प्रेत नहीं है, पर उस मोमेंट पर वो डर जाता है। तो अच्छी होना क्या चाहिए, बच्चों को बचपन से ही इस चीजों के बारे में डिस्कस ना करें, करे भी नेगेटिव करे। जिन बच्चों को माँ बाप ने या उनके सराउंडिंग में भूत प्रेत की डिस्कशन नहीं है या भूत प्रेत की एग्जिस्टेंस को डिनाय किया जाता है, वो बच्चे बड़े होने के बाद कितना भी कमजोर हो वो भूत प्रेत से कभी ना डरेंगे ना मानेंगे। तो जो मानते हैं इसीलिए नहीं मानते कि वो है, इसीलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा संस्कार उनके अंदर डाल दिया गया है। ये जो और जो वीक अंडरस्टैंडिंग है, कमजोर समझ है, इलिटरेसी, गलत लोगों के साथ बैठना उठना, गलत माँ बाप का जो ट्रेनिंग है, और जनरली ह्यूमन बींग बहुत इजीली ब्लाइंड फेथ में आ जाता है, बिलीव करने लग जाता है सुपरस्टिशन में, इसी के कारण ये होता है। इसके कारण पूरे दुनिया भर में बिलियन बिलियन डॉलर्स की एक इंडस्ट्री भी खड़ी है, इन भूत प्रेतों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी मिलते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा वो स्त्रियों को उठाना पड़ता है। देखिए भूत प्रेत कैसे दिखते हैं। ये तो जी भूत हो गए, ये शैतान है, ये पता नहीं बेताल या क्या है, ये जीन है, ये जीन भी होते हैं जी। सबसे ज्यादा गरीब अनपढ़ महिलाएं इससे परेशान, उनको ये भोगना पड़ता है। आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं, 17th और 18th सेंचुरी के बीच में, 100 साल के बीच में, जहां यूरोप में, जिस समय यूरोप में बहुत ज्यादा ये विच का, ये डायन और चुड़ैल की बहुत ज्यादा विश्वास था, 100 साल के अंदर अंदर एक सर्वे कहता है मोर देन 400,000 लेडीज, मतलब 400,000 से ज्यादा महिलाएं मारी गई, जलाई गई और या टर्चर करके मार दी गई। आज भी यूरोप जैसे बहुत वेल एजुकेटेड देशों में विच हंटर होते हैं, डायनों को, चुड़ैलों को चुड़ैल समझ करके उनको मारना पिटना, सोशियल उनको सेपरेशन करना, अनटचेबल करना होता है। दुनिया में ज्यादातर देशों में होता है, और हमारे देश में भी मतलब भारत में भी एक एक राज्य में आपको लाखों की संख्या में मिलेंगे जहां महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, वो अगर बीमारी से ग्रस्त हो जैसे पागलपन का दौरा या डिलीरियम या प्रलाप हो तो उनको वो भूत चढ़ा हुआ है, प्रेत चढ़ा हुआ है करके ओझा को बुलाते हैं, वो ओझा झाड़ू से पीटते हैं उनको, क्या क्या गरम लोहा तपा कर उनको दबाते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत महिलाओं को मार दी जाती हैं। बाकी तो जो समाज में फर्क पड़ता है पड़ता है। और इस भूत प्रेत की भावना को जो लोगों के अंदर जो विश्वास है, इस विश्वास को क्याश करके बहुत सारे चोर डाकू माफिया इंडस्ट्री खोल रखे हैं, किसी बिल्डिंग को कब्जा करने के लिए अनाउंस कर देते हैं कि इसके अंदर भूत है प्रेत है, फिर लोग उसके आसपास आते नहीं, फिर माफिया कब्जा कर लेते हैं। लोग घरों में गांव में किसी की धान या गेहूं जो उनके बैकयार्ड में यार्ड में रखा होता है उसको हड़पने के लिए चोर पहले फैला देते हैं कि रात को भूत आ गया था, तो वो घर वाले बाहर नहीं निकलते हैं, दो तीन दिन तक डर के मारे रात को सो घर के अंदर रहते हैं, दो दिन के बाद मिलता है कि उनके जो खलिहान में जो यार्ड में जो धान या गेहूं रखा हुआ था वो गायब हो चुका है। तो दुष्ट लोग भी इस भूत प्रेत का सहारा लेकर के लोगों के मिसयूज करते हैं। जिन लोगों को डर लगता है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम है, इसका इलाज करना चाहिए। भूत प्रेत होता नहीं है, ना शास्त्र की दृष्टि से ना लॉजिकली होता नहीं है। दो तीन मिनट और लेंगे। जो लास्ट टॉपिक है वो है स्वर्ग और नरक की बात। कुछ लोगों का कहना है आत्मा मरने के बाद स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, इसलिए हमारे यहां हिंदू धर्म में जो मर जाते हैं कहते हैं ये स्वर्गत हो गए, स्वर्ग स्वर्ग पधार गए, स्वर्गवासी हो गए, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं हमारा जो अपना आदमी है, जो अपना है पुरुष हो या स्त्री हो, वो सब स्वर्ग जाएंगे। वो कितना चोरी करे, मकारी करे, बेईमानी करे, डाका डाले, कुछ भी करे, वो सब स्वर्ग जाएंगे जी, हमारे पिताजी स्वर्ग चले गए। नर्क कौन जाएगा? दुश्मन के बच्चे, दुश्मन के फैमिली वाले सब जाते हैं। हमारा कोई भी आदमी कभी नर्क नहीं जाता है, ना मैं जाता हूं ना हमारे मेरे जान पहचान रिलेटेड कोई भी आदमी कभी भी नर्क नहीं जाता है, सब दूसरों के जाते हैं। इसीलिए हम सब बोलते हैं स्वर्गवासी पिताजी, स्वर्गवासी माताजी, स्वर्गवासी, सब स्वर्गवासी हो जाते हैं। अब ईश्वर जाने कौन स्वर्ग जाता है कौन नर्क जाता है। तो ये स्वर्ग नर्क का क्या है? डेफिनेटली हमारे सभी शास्त्रों में, वेद से लेकर सभी शास्त्रों में स्वर्ग और नर्क के शब्द मिलते हैं। ये भी प्रमाण मिलते हैं, अच्छे कर्म करने पर स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म करने पर नर्क मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में आता है, मीमांसा दर्शन में भी आता है, स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग चाहिए वो यज्ञ करे। तो फिर वो स्वर्ग और नरक क्या चीज है? क्या स्वर्ग कोई जगह है जहां मरने के बाद जाते हैं, जैसा कि हम पुराणों में पढ़ते हैं और दूसरे रिलीजन में पढ़ते हैं हेवन के बारे में, जहां सब सुख सुविधाएं हैं? या नर्क ऐसा कोई जहां है जहां बहुत टॉर्चर किया जाता है, ऐसा कुछ है? मीमांसा दर्शन के एक आचार्य हुए शबर ऋषि, महर्षि शबर, उनका नाम है शबर, वो मीमांसा दर्शन के भाष्यकार हैं। तो स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग चाहिए वो यज्ञ करे, इसकी व्याख्या में इंटरप्रिटेशन में लिखते हैं स्वर्ग क्या है। कहते हैं सर्वो ही पुरुषः सुख सर्वो ही पुरुषः सुखम कामयते तस्मात् स्वर्गो वही सुखम। तो शबर मुनि लिखते हैं कि हर मनुष्य हर प्राणी जीवन में सुख ही चाहता है, वो कुछ भी करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके इंटेंशन अंदर रहता है सुख चाहिए, इसीलिए सुख ही स्वर्ग है। स्वर्ग कोई जगह का नाम नहीं है या नर्क कोई जगह का नाम नहीं है, स्वर्ग और नर्क स्टेट ऑफ लाइफ है। आप अगर सुखी हो, अच्छे फैमिली है, अच्छा घर परिवार है, जीवन में सब अच्छा चल रहा है, गरीबी नहीं है, जीवन में जो चाहिए सब मिल जाता है, शांति से गुजारा होता है, ऑफिस जाते हो तो ऑफिस का माहौल पॉजिटिव है, वापस जब छुट्टी होती है तो मन करता है घर जाऊं, अपने बीबी बच्चे या पति से मिलूं, मतलब घर का माहौल भी ठीक है, तो आप स्वर्ग का जीवन जीते हैं। अगर आप सुबह 5 बजे ऑफिस भाग जाते हैं, रात को 8 बजे तक भी घर आने को मन नहीं करता, मतलब घर में नरक है, घर नरक है, ऑफिस जाने को मन नहीं करता, मतलब ऑफिस में नरकपन है, जीवन में जो सफरिंग है वो नरक है, और जीवन में जो सुख है वो स्वर्ग है। ये जो स्वर्ग शब्द को समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, ये दो शब्दों से बना है, स्व प्लस ग, बोलते ना भूर भुव स्व, वहां भी स्व आया है, वो स्व का अर्थ क्या है, सुख स्वरूप, आप बोलते हैं ना परमात्मा सुख स्वरूप है, स्व का अर्थ होता है सुख आनंद, अग जिस गा मतलब गमन, जिसके द्वारा सुख की गति प्राप्ति होती है, जिस जगह पर स्वर्ग की सुख के सुख मिले, जिस काम के द्वारा स्वर्ग सुख मिले, जिस समय पर सुख मिले, वो सब स्वर्ग है, स्वर्ग सुख का साधन है, नरक दुख का साधन है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, सातवें आसमान पर, चौथे आसमान पर, नरक कोई नीचे सातवें पाताल और पांचवें पाताल पर है, ये इमेजिनेशन क्यों है? स्वर्ग एक जगह का नाम है, वैसे तो किसी के लिए स्वर्ग सातवें आसमान पर है, किसी के चौथे आसमान में है, हमारे मॉडर्न हिंदुओं में कोई कैलाश पर्वत पर है और पता नहीं वैकुंठ में है, अलग अलग स्वर्ग है। स्वर्ग में होता क्या है, सब जगह ऑलमोस्ट एक ही टाइप की चीजें होती हैं, क्या वहां जाने पर आपको बुढ़ापा नहीं होगी, जो चाहो खाने पीने को मिल जाएगा, वहां खूबसूरत सुंदर सुंदर महिलाएं होती हैं, हर धर्म में है जी, सुंदर सुंदर महिलाएं होती हैं और जवान होती हैं, कभी बुढ़े नहीं होते हैं। मेरे ख्याल से किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में का जो स्वर्ग की कल्पना है उसमें सुंदर सुंदर पुरुष होते हैं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है उसकी चर्चा हम अभी करेंगे, थोड़ा एक दो मिनट ज्यादा लूंगा, वैसे आज लेट हो रहा है पर कंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि जिस समय ये स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई लोक के रूप में, ये वेदादि शास्त्रों में स्वर्ग और नरक शब्द तो मिलता है पर वो सुख के साधन के रूप में, आनंद के साधन के रूप में, न कि कोई स्वर्ग लोक है, जगह है, नरक लोक है। तो ये लोक की कल्पना कहां से आई और उस लोक की कल्पना के पीछे रहस्य क्या है? रहस्य है कि सोचिए 500 हजार साल, 1500 साल पहले मनुष्य के पास जो होता नहीं था, जिस चीज के लिए वो तरसता था, पाना तो चाहता था, मिल नहीं पाता था, वो सब उन्होंने स्वर्ग की कल्पना में लिख दी। पैदा होने पर हम मरते हैं, बुढ़ा हो जाते हैं, यह हमें पसंद नहीं है, तो हमने लिख दिया कि अगर आप हमारे धर्म को मानोगे, ये करोगे, हम तुम्हारा ये इलाज कर देंगे। इस जन्म में तो नहीं कर सकते, मरने के बाद अगर आप हमारी बात मानो, हमारे तरह से पूजा पाठ धर्म जो भी रिलीजियन को फॉलो करो, तो हम आपको वहां भेजेंगे जहां आप बुढ़ा नहीं होगे। जी गरीबी में रहना पड़ता है, बहुत कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है, वो सब मरने के बाद आप मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। जी पत्नी एक ही मिलती है, कोई बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान धनी पैसा वाला राजा जमींदार हो, 2-4 बीबियां रख देते हैं, वो भी 2-4, उसमें भी झगड़े होते रहते हैं, पर मन करता है कि 10-20-50 हो, कोई बात नहीं जी, इस जन्म में हम नहीं कर सकते, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, वहां आपको सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है वो कभी बुढ़े नहीं होते। आप कहोगे ये क्यों नहीं लिखा कि वहां सुंदर सुंदर पुरुष भी मिलते, हो सकता है स्त्रियों का भी मन हो, कि किसी भी पुराण को, कुरान को, बाइबल को किसी स्त्री ने लिखा ही नहीं ना, पुरुषों ने लिखा, वो अपना सोचेंगे, स्त्रियों का क्यों सोचेंगे भला। अगर कोई स्त्री लिख रही होती पुराण वगैरह तो लिखती कि वहां सुंदर सुंदर लड़के मिलेंगे जो हमेशा जवान रहते हैं। और क्या स्वर्ग में होता है? चिरा वसंत। ये चिरा वसंत क्या होता है? ऑलवेज स्प्रिंग। या ऑलवेज स्प्रिंग क्या होता है? एयर कंडीशनड एटमोस्फियर। हजार साल पहले एक नवाब को, एक बहुत बड़े राजा को जो सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी, आज का एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी भी स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग का जो डिस्क्रिप्शन है किसी भी रिलीजन में, उसका 80% जो स्वर्ग में मिलता है वो आज एक मिडिल क्लास को मिलता है। आप सब जी चिरावसंत में रहते हो, एयर कंडीशनड घर में रहते हो। पहले जमाने में राजा महाराजे करोड़ों रुपए हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। गर्मी हो तो कोई नहीं, दो चार नौकर लगाएंगे, बड़े बड़े ये पंखा लटका, पंखा तो नहीं होता था, ये जो चटाई होती थी चटाई लगा करके हिलाते रहो। आज घर में मशीन लग जाता है, आप स्वर्ग का एक हिस्सा पूरा हो गया जी, चिरा वसंत। गरीबी बहुत थी, राजा महाराजे जो मर्जी खाते पीते थे, आम लोगों को तो कुछ नहीं मिलता था, दाल रोटी भी मिल जाए बढ़िया। आज मिडिल क्लास घर में जो चाहो जैसा चाहो जब चाहो घर में हाजिर हो गया ना, स्वर्ग अवेलेबल। तो जो भी सुख सुविधाओं से मनुष्य, मनुष्य मतलब पुरुष, मर्द है, पुरुष पुरुष लोग जिन सुख सुविधाओं से वंचित रहते थे पर मन में आशा करते थे, वो सब स्वर्ग की डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। और ये कब मिलेगा? जब आप हमारे रिलीजन में आओगे, हमारे हम जैसा बताते हैं वैसा करोगे, ये सब मिलेगा, नहीं तो नरक जाओगे। किसी भी स्वर्ग नरक की चर्चा करने वाला शास्त्र, वो किसी भी रिलीजन का हो या कोई भी पंडित बोलता हो, वो कभी आपको नहीं बताता है कि अच्छा सत्य बोलने पर स्वर्ग जाओगे, झूठ बोलने पर नरक जाओगे, ऑनेस्ट रहोगे तो स्वर्ग जाओगे, डिसऑनेस्ट पर नरक जाओगे, नॉन वायलेंट होगे तो स्वर्ग जाओगे, वायलेंट होगे तो नरक, कोई नहीं बोलता। ये सब शास्त्रों में जहां स्वर्ग नरक की कल्पना है वहां स्वर्ग नरक कैसे मिलेगा? आप जब हमारे रिलीजन का जो थॉट प्रोसेस है उसको मानोगे, हमारे बताए गए गॉड को मानोगे, हमारे बताए गए प्रोफेट को मानोगे, हमारे बताए गए लिटरेचर को पढ़ोगे, तब जाओगे। बाकी तुम चोर हो, बेईमान हो, धोखेबाज हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वर्ग और नरक जाओ। तो स्वर्ग और नरक बहुत लोग कहते हैं, जो गीता में लिखा है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, मतलब भाव है कि जो अच्छे कर्म करने वाले ऊर्ध्व जाते हैं मतलब स्वर्ग जाते हैं, नीचे गलत काम करने वाले नीचे को जाते हैं। वहां ऊंचा और नीचे का मतलब नहीं कि स्वर्ग और नरक, ऊपर उठते हैं, हायर स्टेज होता है। गरीब लोग, धनी आदमी गरीब से ऊपर होता है, ज्ञानी आदमी अनपढ़ से ऊपर होता है, सुखी आदमी दुखी से ऊपर होता है, दुखी सुखी से नीचे होता है। वहां स्टेट ऑफ लाइफ है, आप दूसरों से ऊपर कहलाओगे, दूसरों से नीचे कहलाओगे। कोई स्वर्ग मर्त्य संसार, स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। अगर लाइफ में तुम सुखी हो तो तुम स्वर्ग स्वर्ग में हो, अगर दुखी हो तो नरक में हो। जितना दुखी उतना नरक है, जितना सुखी उतना स्वर्ग है। अरे ये स्वर्ग नरक मिलेगा कैसे? ये सुख और दुख तुम्हारे कर्मों से, अच्छा कर्म करोगे अच्छा स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करोगे कम स्वर्ग मिलेगा, ज्यादा नरक मिलेगा। तो ये और स्वर्ग नरक की भावना है। तो हमने आज इस आत्मा के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तीन सीरीज में हमने डिस्कशन किया और आज आफ्टर डेथ में पुनर्जन्म शरीरों में जाता है या भूत प्रेत बनता है या स्वर्ग नरक का जाता है, ये हमने चर्चा की। मोक्ष वाली टॉपिक हमने आज चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि वो तो अलग, वैसे भी अलग से हम चर्चा करते हैं उस पर, वो दूसरे प्रसंग में उसकी चर्चा करेंगे। अपने ध्यान से सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।